ओवर कॉन्फिडेंस। वो पूरी तैयारी के साथ बाकी सबके सामने उपस्थित हुई थी और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उसने गहरी सांस ली, मानो कि उसने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अब अरमान को सारी डिटेल्स देने के बाद कहीं ना कहीं उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हुई और धीरे धीरे उसने अरमान को देखने की कोशिश की। फिलहाल संजना से डिटेल्स लेने के बाद अरमान ने दमदार आवाज में कहा, ग्रेट वर्क, और फिर उसके बाद उसने टाइगर को देखा। टाइगर ने तुरंत अरमान की नजरों को भांपकर संजना को वहां से जाने का इशारा किया। अब आगे, फिलहाल अरमान को पूरे 2 साल की रिपोर्ट भी मिल चुकी थी कि इन 2 सालों में अरमान ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, किस कंपनी के साथ डील हुई है, कितने प्रोजेक्ट मिले और कितना टर्नओवर रहा। सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करने के बाद उसने गहरी सांस ली। कहीं ना कहीं अब जाकर उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ कि चलो कम से कम उसे बिजनेस की पूरी नॉलेज है, वरना अगर वो अपने कंपेटिटर या किसी और से मिलता तो न जाने कोई उसे मेमोरी लॉस कह देता और अरमान ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। अरमान की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी कि उस पर किसी तरह का कोई दाग नहीं था। वो इतना सख्त था कि अपने पर्सनल मैटर को लेकर कोई एक्सेप्शन नहीं करता था। फिलहाल अरमान ने काफ़ी सारी फाइल्स का इनकम्प्लीट काम कंप्लीट किया। उसके बाद अरमान ने टाइगर की ओर गंभीरता से देखा और उससे शांत आवाज में पूछा, टाइगर तो क्या सोचा है तुमने, क्या तुम मारिया को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो? तभी टाइगर ने केवल गहरी सांस ली और एकदम से जवाब दिया, किंग मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल दिया है लेकिन उसमें पूरा 1 महीने की प्रक्रिया में लगने वाली है। ये सुनकर अरमान तिरछी सी मुस्कुराहट के साथ टाइगर के कंधे पर 2 बार थपथपाकर कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अचानक टाइगर की आंखों में एक अनचाहा सा दर्द उभर रहा था क्योंकि भले ही अरमान ने उसकी शादी करवाई थी लेकिन मारिया को वो बचपन से प्यार करता था, मगर उसने कभी भी अपनी मोहब्बत को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन अब जब उसे पता चला कि वो मारिया से बहुत जल्द अलग होने वाला है तो उसके सीने में एक अजीब सा दर्द उमड़ आया था। फिलहाल उसने अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में आस्था अपने पूरे परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, शॉपिंग वगैरह सबके लिए कर चुकी थी। फिलहाल एक बार फिर आस्था कहीं और नहीं बल्कि अपने दादाजी के साथ मौजूद थी, क्योंकि अब आस्था के वापस जाने के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे वैसे वैसे दिग्विजय सिंह जी काफी उदास होते जा रहे थे। फिलहाल आस्था ने उनका हाथ थामा और दबी हुई आवाज में बोली, मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते मैं वापस जाऊं, लेकिन वहां मेरा एक परिवार है, मेरे पति हैं, नानी माँ है, मेरी दीदी रश्मि राधिका और बेस्ट फ्रेंड है रौनक वंशिका, जो मुझे बहुत सारा प्यार करती हैं। दादाजी आप नहीं जानते कि मेरी जिंदगी में रिश्तों के नाम पर नानी माँ के अलावा कभी कोई था ही नहीं, इस दुनिया ने मुझे कभी कबूल नहीं किया, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है और दादाजी मैं वहां जाने के बाद आप लोगों को बहुत याद करूंगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग भी वापस अपने देश में शिफ्ट हो जाएं? अब जैसे ही आस्था ने बातों बातों में ये पूछा तो अचानक से दिग्विजय सिंह जी के हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों में अजीब सा दर्द उभरने लगा। ये देखकर आस्था पूरी तरह से हैरान हो गई। उसने जल्दी से घबरा कर अपने भैया अविनाश को आवाज लगा दी। अविनाश जो उस वक्त अंश के साथ खेल रहा था वो आस्था की घबराई हुई आवाज सुनकर तुरंत दौड़कर दादाजी के कमरे में आ पहुंचा। अपने दादाजी के चेहरे पर इतनी परेशानी के भाव देखकर अविनाश ने तुरंत पास रखी दवा निकाली और उनके मुंह में डाल दी। थोड़ी देर में दिग्विजय सिंह जी की आंखें अपने आप बंद हो गईं। वहीं अगले ही पल आस्था की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने घबरा कर पूछा, भैया क्या हुआ है दादाजी को, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा था, मैंने तो बस। आस्था इतना ही बोल पाई थी कि अविनाश बीच में बोल पड़ा, तुमने जरूर इंडिया चलने की बात कही होगी। ये सुनकर आस्था की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं। लेकिन आपको कैसे पता चला? भैया इंडिया जाने की बात सुनकर दादाजी का ऐसा हाल कैसे हो सकता है, सब ठीक तो है ना? कहीं ना कहीं आस्था के सवाल सुनकर अविनाश ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में आस्था को समझाते हुए बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ गोरी तुम अपने पति और परिवार के साथ रहना चाहती हो और मैं भी तुम्हारे उस फैसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन हम भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए मैंने इंडिया में रघुवंशी विला खरीद लिया था। मैंने उस वक्त दादाजी से रिक्वेस्ट भी की थी कि हम इंडिया चलें, लेकिन दादाजी को वहां एक अजीब सा डर सताता है, आज तक उन्होंने मुझे नहीं बताया कि क्यों। मैंने उन्हें कई बार कहा कि राजवीर का अंत हो चुका है, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जब भी मैं दादाजी से इस बारे में बात करता हूँ कि हमें वापस इंडिया जाना चाहिए तो वो सिर्फ यही कहते हैं, अभी सही वक्त नहीं आया है। फिलहाल आस्था को गार्डन में दादाजी के साथ हुई बातें याद आ गई थी। जिस तरह से आस्था ने उनसे सवाल किया था कि एक लॉकेट के लिए उन्होंने इस तरह से अपनी सारी जमीन जायदाद सब कुछ दांव पर क्यों लगा दिया था, ऐसी भी क्या बात थी, क्योंकि कोई प्रसिद्ध या फेमस होने के लिए इस हद तक कभी भी नहीं जा सकता कि अपने परिवार की जान ही खतरे में डालते। तब आस्था ने गहरी सांस ली थी। फिलहाल आस्था ने मन ही मन ठान लिया था कि इंडिया जाने से पहले वो इस बात का सच जरूर पता लगाएगी कि आखिरकार उसके दादाजी के डर का असली कारण क्या है। वहीं दूसरी ओर इस वक्त आहान और रौनक भी वापस आकर बाकी सभी फैमिली के साथ घुल मिल गए थे। अभिमान जी ने अब सब लोगों को बारी बारी से देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, क्योंकि अब अरमान की नजरों में वसुंधरा और वीर इस घर के नौकर हैं, तो नौकरों के साथ भले ही सिंघानिया मेंशन में बुरा व्यवहार ना किया जाता हो, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस घर में नौकरों के साथ दुर्व्यवहार जरूर होगा। अभिमान जी की बात सुनकर सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट ठहर गई। तभी रौनक ने शरारत से कहा, अरे वाह डैडी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। आपको तो पता ही है कि मुझे तो पल पल भूख लगती रहती है। अब तो मुझे अपनी पर्सनल मेड मिल जाएगी। आप देखिएगा मैं क्या क्या बनवाकर मजे लेकर खाती हूँ। रौनक की बात सुनकर सब हंस दिए, लेकिन तभी नानी माँ थोड़ी सीरियस आवाज में सतर्कता से बोली, बेटे हमें उस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और तुम्हारी हालत अभी ऐसी है कि तुम्हें कुछ भी बिना चेक किए नहीं खाना है। तो सबसे पहले अगर वो खाना लाएगी तो या तो मैं चखूंगी या फिर कोई और जो प्रेग्नेंट ना हो। कहीं ना कहीं नानी माँ की ये बात सबको सही लगी। सभी अब एक एक कदम फूक फूक कर रखना चाहते थे और किसी की भी जानकारी कोई नहीं लेना चाहता था। फिलहाल अरमान अपना काम खत्म करने के बाद जल्दी ही वापस सिंघानिया मेंशन लौटने वाला था। सभी को अच्छी तरह पता था कि ठीक 5 बजे अरमान मेंशन में आ जाएगा, क्योंकि हमेशा की तरह आते ही वो अपनी काली कॉफी पिएगा और फिर जरूरी काम में लग जाएगा। अरमान सिंघानिया की जिंदगी अब वापस पहले जैसी हो चुकी थी। 24 घंटे काम में बिजी रहने वाला इंसान, क्योंकि उसे रोकने वाला अब वहां कोई नहीं था। 5 बजे की खबर सुनते ही सब लोग अलग अलग कमरों की ओर दौड़ गए, ताकि अरमान किसी भी कपल को एक साथ ना देखे, क्योंकि टाइगर और अरमान वाली बात अब सबको पता चल चुकी थी। सबके मन में डर बैठ गया था कि अगर अरमान को उनकी शादी का सच पता चल गया तो शायद वो उन्हें भी तलाक लेने को मजबूर कर देगा, और ये बात कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हर कोई अपने अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता था और उनके बिना जीने बारे कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता था। इसी बीच अरमान की कार का हॉर्न सुनकर सब तुरंत अलग अलग बैठ गए।
वहीं नानी माँ इस वक्त मारिया के साथ उसके कमरे में मौजूद थी, क्योंकि जब से अरमान ने डिवोर्स की बात कही थी तब से मारिया कमरे से बाहर नहीं आई थी। उसकी आंखों में एक अनजाना सा दर्द था, जिसके बारे में वो चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मारिया ने कभी अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर ही नहीं किए थे। लेकिन इस वक्त वो नानी माँ के साथ हाथ थाम कर बैठी थी, और नानी माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कोमलता से बोली, मेरे बच्चे तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे आकाश ने सब कुछ बता दिया है अरमान ने क्या कहा था, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराओ। जब मेरी गोरी बेटी आएगी वो सब ठीक कर देगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें और उस घोड़े को कभी अलग नहीं होने देगी। नानी माँ की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर कहीं न कहीं मारिया को थोड़ी बहुत तसल्ली मिली। उसने बिना कुछ कहे नानी माँ को कसकर गले से लगा लिया। मारिया को इस तरह गले लगाते ही नानी माँ की आंखों में भी आंसू झलक आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से उसे समझाया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करो, और हाँ, इस हालत में तुम्हारा बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए नानी माँ ने उसके लिए फल और दूध सामने रखकर जबरदस्ती उसे पिलाना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त टाइगर कमरे में आया। मारिया को नानी माँ के साथ देखकर उसके दिल को एक अलग ही तरह का सुकून मिला। फिलहाल उसने तुरंत ही अपने कदम वापस ले लिए थे और सीधा अरमान के पास आकर हॉल में उसके पीछे खड़ा हो गया था, क्योंकि वो नानी माँ और मारिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। टाइगर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बीवी के इमोशंस बहुत कम ही बाहर आते हैं, और अगर इस वक्त वो नानी माँ के हाथ से कुछ खा रही है और उनके साथ है तो ज़रूर नानी माँ के साथ काफ़ी अच्छा महसूस कर रही होगी। इसलिए उसने नानी के साथ मारिया को अकेला छोड़ दिया, ताकि वो उनके साथ अपना मन हल्का कर सके, क्योंकि अभी तक टाइगर भी मारिया को 2 शब्द मीठे बोल नहीं पाया था, क्योंकि इस तरह से उसने मारिया के साथ कभी ठीक से बर्ताव किया ही नहीं था। फिलहाल अब सुमित, ध्रुव, आकाश, आहान सभी अरमान के सामने वाले सोफे पर बैठ गए थे, जबकि रौनक, रश्मि, राधिका और वंशिका इस वक्त एक साथ बैठे हुए थे। तभी रौनक ने सोचा कि क्यों ना अब वसुंधरा जी से कुछ मंगवाया जाए, फटाफट से कुछ स्पेशल डिश बनवाया जाए। वसुंधरा, जो कि घर का सारा काम खत्म करवाने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी, और घर का काम कर करके उसकी कमर में काफ़ी हद तक दर्द उठ रहा था। वीर, जो उस वक्त अपनी माँ की कमर पर बाम लगा रहा था, हालांकि वो पूरी तरह से झुंझला रहा था, क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे घूरते हुए सख्त अंदाज में कहा, तो पागल हो गया है क्या? तेरे लिए मैं यहाँ दिन रात अपनी कमर तुड़वा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो क्या तू मुझे इतना सा दर्द में आराम नहीं दे सकता? कहीं ना कहीं वीर को भी उस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अचानक वसुंधरा पर भड़कते हुए चिल्लाया, आखिरकार कब तक हमें इस तरह नौकर बनकर इस घर में काम करना होगा? कहा तो हम इस घर का मालिक बनने का सपना देख रहे हैं और कहा हम इस तरह से एक मामूली से नौकर बनकर रह गए हैं। उसकी शिकायत सुनकर वसुंधरा उठ बैठी और वीर को घूरते हुए नाराजगी से बोली, क्या तू भूल गया कि उस डेविल की याददाश्त चली गई है? और अगर उसकी यादें चली गई हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो एक बार फिर से खूंखार बन गया है और उसके मन में हमारे लिए कितनी नफरत है ये बात हम देख ही चुके हैं। तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से वो एक साल भूल जाऊंगी जो एक साल अरमान ने हमारी जिंदगी के बर्बाद करने में लगाए थे? यहां तक हम दोनों को जूठन खाने पर मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, हमने सड़कों की खाक छानी थी। हमें रहने के लिए सिर छुपाने की कोई जगह भी नहीं मिली थी। लोग हमें धक्का दिया करते थे। इतना ही नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में जिस तरह से मुझे बिजली के झटके दिए जाते थे, तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से मैं वो बातें भूल जाऊंगी? हूं? ये कहते हुए वसुंधरा की आंखों में नफरत साफ साफ झलक रही थी, क्योंकि अरमान ने जो कुछ भी उसके साथ किया वो उसे इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली थी। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया और वीर को अच्छे से समझाया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कम से कम नौकर बनकर ही सही, लेकिन याद रहे कि सिंघानिया मेंशन जैसा आलीशान घर तो हमें रहने के लिए मिल रहा है। और रही बात अरमान की, तो केवल कुछ दिनों की बात है। मुझे पूरी तरह से पता है कि मुझे उसे किस तरह से ब्लैकमेल करना है, और शायद तू भूल रहा है हमने उसका सॉफ्ट साइड भी देखा है जो उसकी पत्नी और बच्चे के बाद उसकी जिंदगी में आया है। बस इस बात का हमें फायदा उठाना है। अब हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो अपने बारे में कुछ नहीं जानता। इसी बात का हम फायदा उठाएंगे। फिलहाल मेरी बात ध्यान से सुन, अगर हम यहाँ नौकर बनकर काम कर रहे हैं तो एक ना एक दिन हम यहाँ के मालिक भी बनेंगे। तो शांति से जितना तुझसे कहा जाए सिर्फ और सिर्फ उतना कर। और खबरदार, अगर तूने इस घर की किसी भी लड़की को या किसी भी औरत को गंदी नजरों से देखा भी तो उसके पति तेरा कितना बुरा हाल करेंगे। वसुंधरा, जिसे अपने बेटे की नीयत के बारे में पूरी तरह से पता था और ये भी जानती थी कि उसका बेटा कितना ज्यादा मक्कार और दुस्साहसी किस्म का आदमी है, लड़कियां उसे हर रात अपने बिस्तर पर चाहिए होती थी। फिलहाल उसने अपने बेटे को डरा धमका कर शांत करा दिया था। लेकिन वीर, जो एक साल से तो भूखे भेड़िए की तरह तड़प रहा था, उसकी जिंदगी में एक साल से कोई लड़की नहीं आई थी। उसने सोचा कि काश उसे कुछ पैसे मिल जाते तो वो किसी लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए फिर से उसी क्लब में चला जाएगा जिस क्लब में वो अक्सर जाया करता था। इसके लिए उसे कम से कम 3 लाख रुपए की जरूरत थी।